بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیکھو بھائی، بات چل رہی ہے حب دنیا اور اس کا علاج. بہت عجیب باتیں چل رہی. ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، انفاس عیسیٰ کی بات ہے، میں کسب دنیا سے منع نہیں کرتا بلکہ حب دنیا سے منع کرتا ہوں. کسب دنیا نے کمانا، حب دنیا یعنی محبت. تو فرمایا دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، حب دنیا دنیا کی محبت سے منع کرتا ہوں. کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ، بلکہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم الی آخری. میں تو اللہ تعالی کی کمال رحمیت کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت سے بھی منع نہیں کرتے بلکہ احبیت سے منع کرتے. ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے احبت. احبت یعنی بہت ہی زیادہ محبت، اس سے منع کرتے ہیں. نفس محبت جو چھوٹی بہت تھوڑی بہت ہوتی ہے اسے منع نہیں کرتے. تو فرمایا منع نہیں بلکہ احبیت سے منع کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت اللہ و رسول کی محبت سے زیادہ ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ اطاعت احکام میں اختلال ہو. جی، بلکہ طبعی احبیت سے منع نہیں کرتے، صرف عقلی احبیت سے. بلکہ عقلی احبیت سے منع فرماتے ہیں. اور احبیت عقلیہ کا معیار یہ ہے کہ اطاعت احکام اور جہاد فی سبیل اللہ میں کمی نہ ہو. اگر یہ معیار محفوظ ہے تو پھر طبعی محبت، اگر دنیا سے یا بیوی سے یا اولاد سے زیادہ بھی ہو تو کچھ ڈر نہیں. اگر ایک شخص اپنے بیٹے کے مننے پر زیادہ روئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے کے سن کر زیادہ نہ روئے تو مواخذہ نہ ہوگا. یعنی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے، حضور کی محبت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کے واقعے کو، وفات کے واقعے کو سن کر رونا نہیں آ رہا اور اپنے بیٹے کا رونا آ رہا ہے. تو مواخذہ اس پر کوئی پکڑ نہیں، اس پر ہوگا مواخذہ تو اس پر ہوگا کہ تزاحم دین اور دنیا کے موقع پر دنیا کو دین پر ترجیح دے. دین اور دنیا ہو جمع ہو جائے تو اس میں دنیا کو ترجیح دے تو پکڑ ہوگی. اور اگر یہ نہ ہو بلکہ دنیا کی محبت اور حرص کو دبا کر دین پر فدا کر دے، گو ترک دنیا سے حزن بھی ہو اور دل بھی دکھے، تو اس پر مواخذہ تو کیا ہوتا، اس سے ثواب بڑھے گا. کمال تقوی یہی ہے کہ دنیا کے حرص محبت ہوتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ دنیا کی حرص ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرو تو یہ تو کمال ہوا، اور حرص نہیں ہو تو کیا مقابلہ کرو. تو یہ شہوت دنیا مثل گلخن است کہ ازو حمام تقوی روشن است. خلاصہ یہ ہے کہ محض حرص دنیا مذموم نہیں بلکہ اس کے مقتضا پر عمل کرنا مذموم ہے. پہلے سے ہی یہی بات چل رہی ہے اور اسی بات کو اور زیادہ کھلتے جا رہے ہیں کہ دنیا صرف دنیا بری نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی محبت بری ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. يعني اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلہ اور خاندان और तुम्हारे वो माल और दौलत जो तुमने कमाए हैं, और वो तिजारत जिसमें कम निकासी न होने का तुम्हें अंदेशा रखते हो, कम न हो जाए, और वो घर जिनमें रहने को तुम पसंद करते हो, ये सब चीजें, अगर ये सब चीजें तुम्हें अल्लाह ताला उसके रसूल से, अल्लाह ताला और उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा महबूब है, तो तुम मुंतजिर रहो यहां तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म भेज दे। यानी ये चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब है, अगर सब चीज तुम्हें अल्लाह ताला उसके रसूल से जिहाद करने से ज्यादा महबूब, अगर उससे ज्यादा महबूब, यानी इन चीजों की मोहब्बत तो है, लेकिन इन चीजों की मोहब्बत की वजह से आमाल नहीं छूट रहे, दीन की मेहनत हो रही है, आमाल हो रहे हैं, जकात अदा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर इन चीजों की मोहब्बत की वजह से अल्लाह के अहकाम टूट रहे, तो फरमाया तो तुम मुंतजिर रहो यहां तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म भेज दे। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह अभी जो मलफूज था उसकी तशरीह बता रहे हैं, इस मलफूज में बयान फरमा रहे कि इस आयत में वईद उन चीजों की ज्यादा महबूब होने पर है, उन चीजों की सिर्फ मोहब्बत नहीं, ज्यादा महबूब होने पर, महबूब होने पर है, कि ये चीजें अल्लाह और रसूल से ज्यादा महबूब नहीं होनी चाहिए, और वाकईतन हमें नहीं है, आमाल नहीं छूटने चाहिए। मालूम हुआ कि अगर इन चीजों से फी नफसी ही मोहब्बत हो, तो तन्हा ये मोहब्बत बुरी नहीं, मजमूम नहीं। अल्लाह ताला की रहमत देखिए, अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि न तो कस्बे दुनिया से मना किया, दुनिया कमाने से अल्लाह ने मना नहीं किया, और न दुनिया की ऐसी मोहब्बत से मना किया जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा न हो, यानी ऐसी दुनिया की मोहब्बत से भी मना नहीं किया जो ज्यादा न हो, कम हो, ऐसी मोहब्बत की भी इजाजत दे दी। ये तो अल्लाह ताला का एहसान और रहमत है। अच्छा, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा होने की अलामत क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ज्यादा है या दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? जी, उसका जवाब हजरत वाला ने ये दिया कि जिसकी अलामत ये है, ये अलामत बताई कि इताअत अहकाम में इख्तिलाल हो जाए, यानी जब मालो दौलत में मशगूल होकर इन्हिमाक के नतीजे में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में खलल आ जाए, कमी आ जाए, तो समझ लो कि दुनिया की मोहब्बत बढ़ गई। ये मकाम डरने का है और गुनाह है, तो पहले भी बताया था यही चीज। तबई अहबियत भी ममनू नहीं। आगे हजरत वाला ने और आसानी की बात इरशाद फरमाई कि बल्कि तबई अहबियत से मना नहीं करते, अगर ज्यादा मोहब्बत भी है तो तबई है, उससे मना नहीं करते, सिर्फ अकली अहबियत से मना फरमाते हैं, उसमें हमारे और आपके लिए और आसानी कर दी। यानी अगर किसी शख्स को तबई तौर पर दुनिया की किसी चीज से ज्यादा ताल्लुक और ज्यादा मोहब्बत है और उस चीज की तरफ ज्यादा शौक महसूस होता है, या उसकी तरफ तबई मैलान ज्यादा है और अल्लाह उसके रसूल की तरफ तबई मैलान इस दर्जे का नहीं है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये तबी होने की वजह से गैर इख्तियारी है, और गैर इख्तियारी होने की वजह से उस पर मुआखजा और गुना भी नहीं। समझे? अलबत्ता ये तबीयी मोहब्बत, अकली मोहब्बत दुनिया की चीजों के मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा होनी चाहिए। यानी अकल से सोचो कि दुनिया की चीजें फानी हैं, नापायदार है, बेहकीकत है, अलबत्ता जरूरत के तहत उनको इख्तियार किया हुआ है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमेशा के लिए, हमेशा रहने वाली है, उसकी कोई इंतहा नहीं। जब इतनी बात सोच ली और उस पर अकीदा रख लिया, तो बस अकली मोहब्बत हासिल हो गई। की मोहब्बत तो आज हम सबको है, और वाकईतन दुनिया की मोहब्बत हमें इख्तियारी है, खाली थोड़े आमाल की वजह से हमें वो, क्योंकि अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हें दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, और वो भी अकली है, तबीई नहीं। अकली होती तो अल्लाह के हुक्मों में कमी ना आती। जब इतनी बात सोच ली, उस पर अकीदा रख लिया, तो बस अकली मोहब्बत हासिल हो गई। अल्लाह ताला की रहमत की कोई इंतहा है कि एक तरफ तो कस्बे दुनिया से मना नहीं किया, दूसरी तरफ दुनिया से तभी मोहब्बत की भी इजाजत दे दी, और तीसरी तरफ दुनिया से ऐसी अकली मोहब्बत जो अहबियत के दर्जे तक न पहुंची हो उसकी भी इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत तो देखिए। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह का वाकया, हदीस शरीफ में आता है, कुन्ना मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहु आखिजु बियदी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, फकाल हु उमर या रसूल अल्लाह ला अंत अहब इलैय मिन कुल्ली शैइन इल्ला नफ्सी, قال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر الآن يا عمر. رواه البخاري. صحابي رضي الله عنه فرماتے ہیں حضرت عمر کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب، اپنے نفس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ عمر، یعنی اب ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح سمجھ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاف گوئی دیکھی، ایک تو ان کے دل کتنے صاف تھے، ایمان والا صاف دل کا ہوتا ہے، یاد رکھو دین جو ہے وہ دلوں کو صاف کرنا سکھاتا ہے، اور ہماری جو سوسائٹی ہے، الگ الگ جو کمیونٹی ہے، برادری ہے، کنٹری ہے، وہ اس کے اندر الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں، تو ان طبیعتوں میں رہتے ہوئے دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ دین کے کام کے لیے ساری طبیعتوں کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج اور شریعت اور اس کے مزاج کے تابع ہونا پڑے گا، تبھی جب جا کے ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے صاف تھے، کیونکہ صاف ہونا یہ مومن کی علامت ہے، اور دلوں میں کچھ رکھنا اور زبان پر کچھ بولنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے مومن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، منافقت ہوگی، کیونکہ منافق ایسے ہی تھے حضور کے زمانے میں، کہ اوپر تو بہت بولتے تھے اور اندر سے کچھ اور ہوتے تھے، دو رنگی زندگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاف گوئی کو دیکھیے، کیا دوسرا کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت نہیں؟ آج ہم سے بھی کوئی ملنے آتا ہے، ملتا بھی، او ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعریف کریں گے کوئی بھی، لیکن کوئی بھی ایک اپنا کوئی برائی نہیں کرے گا، ہاں آپ سے آپ کا کام بہت، یہ کام مجھے پسند نہیں، ایسا کوئی تو یہ لگتا ہے کہ جب کوئی یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں برا نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے یہ مومن ہے، حالانکہ سامنے والے سوچتا ہے کہ ہم ان کو ایسا کہیں گے تو ان کو برا لگیں گے۔ نہیں، اگر سامنے والا کسی نے اپنے کچھ باتیں بتا دی جو دل کی ہے، دل کی صفائی کی علامت، نقص نہیں ہے کہ ایک بات پسند نہیں ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ مومن ہے۔ مجھے آپ سے اتنی محبت نہیں، لیکن یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی محبت نہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو حقیقی کیفیت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی، تاکہ اگر یہ کوئی بیماری ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج فرما دے۔ اسے پتا چلا کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، अपने माँ बाप के सामने, ये हमारे बड़े होते हैं या जमात में है तो अपने अमीर के सामने साफ साफ बात करनी चाहिए ताकि वहां हमारी इसलाह हो जाए, गलती है तो पता चल जाए। हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु ने हुजूर सासन के सामने साफ बात की थी, भाई मुझे आप महबूब तो है लेकिन मेरे नफ्स से ज्यादा नहीं। तो बीमारी न बताते तो इलाज कैसे होता, बता दी तो इलाज भी हो गया और बाद में कह भी दे कि हाँ अब महबूब है, हो गया। तो ऐसे ही हमारे दिलों के अंदर कई ऐसी बीमारियां हैं, मुनाफिकत की बीमारियां हैं, बदगुमानी है, जब तक बताएंगे नहीं तो इलाज नहीं होगा, बताएंगे तो इलाज होगा। क्योंकि इसका ताल्लुक, हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु बोलते नहीं तो इसका इलाज होता ही नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक बोलने से है, बोलोगे तो पता चलेगा, क्योंकि दिल की कैफियत तो फिर अल्लाह ही जानता है, कोई नबी गैब की बात थोड़ी जानते हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है कि उस वक्त हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आदम रदिल्लाहु अन्हु के सीने पर हाथ मारा, सीने पर हाथ मारा जब उन्होंने ऐसा कहा, तो फौरन हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु ने फरमाया अलान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखो सीने पर हाथ मारा जब उन्होंने कहा कि यानी बीमारी था तो आपने हाथ मारा, बीमारी का इलाज कर दिया, ये बीमारी का इलाज। हाँ यही नक्श है, इसीलिए नक्शबंदी सिलसिले में यही सीने पर हाथ रखकर उनको अल्लाह 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 कहा जाता है, ये इस बात की दलील है कि इसके बाद इनके अंदर की बीमारियां निकलना शुरू हो जाती है, तवज्जो मिलती है, ये सीने पर हाथ मारने की तरह। तो फौरन फरमाया अलान या रसूल अल्लाह, अब आप जान से भी ज्यादा महबूब हो गए। जी अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एकदम कैसे इनकलाब, अभी तो अपनी जान महबूब थी और सीने पर हाथ मारा तो एकदम से इनकलाब आ गया कि नहीं आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब, जी कि आप मुझे अपनी जान से ज्यादा महबूब नहीं, और अब फरमा रहे कि अब आप जान से भी ज्यादा महबूब। ये एक लम्हे में कैसे इनकलाब आ गया। मुहद्दिसीन ने उसकी दो वजह फरमाई, बाद हजरात ने तवजीह की है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु अन्हु के सीने पर हाथ मारकर तसर्रुफ फरमाया, देखो हाथ मारकर तसर्रुफ फरमाया, ये तवज्जो दी, ये तवज्जो होती है जो हाथ के जरिए से तवज्जो दी यानी तसर्रुफ फरमाया कि उनके सीने को साफ हो गया, फरमाया तो सीने पर हाथ मारकर तसर्रुफ, इसके नतीजे मोहब्बत में जो कमी थी वो खत्म हो गई और जिस दर्जे की मोहब्बत की जरूरत थी वो हासिल हो गई। हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु अन्हु मोहब्बत तभी समझे, और दूसरा उलमा ने उसकी तवजीह ये की, एक तो ये जवाब है कि कैसे इनकलाब आ गया कि आपने हाथ लगाया, उस हाथ के जरिए से आपने एक तसर्रुफ फरमाया, मोहब्बत बढ़ गई। दूसरी वजह ये बताते उलमा ने कि हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इख्तियार फरमाया, वो ये कि जब हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु अन्हु ने हदीस सुनी तो आप ये समझे कि मोहब्बत से मुराद मोहब्बत तबई है। एक वजह क्या फरमाई कि फरमाया मोहब्बत तबई तो मेरी जान मुझे ज्यादा महबूब है, यानी तबई मोहब्बत भी अपनी जान अपने माल और वालिदैन औलाद के मुकाबले में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने फरमाया कि तबई मोहब्बत तो मुझे अपनी जान से ज्यादा है। हालांकि हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु अन्हु का ये ख्याल सही नहीं था बल्कि आपको गलत फहमी थी, क्योंकि हदीस में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मोहब्बत तबई नहीं थी बल्कि मोहब्बत अकली थी। तो आपने जो फरमाया था तो उन्होंने समझा तबई मोहब्बत तो वो तो उनको ज्यादा थी, फिर जब समझे कि नहीं आपकी मुराद अकली थी तो हाँ बोले तो अकल के एतबार से तो आप मुझे ज्यादा महबूब हूं, लिहाजा हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर हाथ मारकर इस तरफ इशारा फरमाया कि तुम बात गलत समझे, इसलिए कि मेरी मुराद मोहब्बत अकली है जो तुम्हें पहले ही से अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। तो ये तंबी हुई। उस वक्त हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु अन्हु को अपने गलत ख्याल का तनब्बु हुआ और ये गलत फहमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दूर हुई और आपने फरमाया अल आन यानी अब बात मेरी समझ में आ गई और वाकईतन अकली मोहब्बत मुझे अपनी जान के मुकाबले में आपसे ज्यादा है, ये दूसरी तवजीह थी। बात समझ में आ गई। बहरहाल जहां कहीं मोहब्बत मतलूब है, हदीसों में कुरान में आती है ना, मोहब्बत मतलूब है और मामूर भी ही है, यानी जिसका हुक्म दिया गया है वहां मोहब्बत अकली मुराद है, याद रखना, मोहब्बत तबई मुराद नहीं, क्योंकि वो इंसान के इख्तियार से खारिज है। तबई जो है इख्तियार से खारिज। मसलन अगर किसी शख्स की दो बीवियां हैं तो उस शख्स के लिए हुक्म ये है कि दोनों के दरमियान मसावात करे, इंसाफ करे। इस हुक्म का तो तकाजा ये है कि मोहब्बत भी दोनों के साथ बराबर होनी चाहिए। हाँ, इस हुक्म का तकाजा ये मसावत यानी दरमियान बराबरी करे। तो फरमाया मोहब्बत में भी बराबर होने, लेकिन जो मोहब्बत बराबर होनी चाहिए वो मोहब्बत अकली है। यहां पर भी मोहब्बत तभी नहीं, मोहब्बत तभी एक बीवी से ज्यादा हो सकती है और दूसरी से कम हो सकती है। जी, इस पर कोई पकड़ नहीं, क्योंकि ये गैर इख्तियारी है। अलबत्ता मुआखजा उस वक्त होगा कि जब एक बीवी से मोहब्बत तभी ज्यादा होने की वजह से उसके साथ कोई ऐसा सुलूक करे जो दूसरी बीवी के साथ नहीं कर रहा है, उसके नतीजे में अदम मसावात लाजिम आ जाए तो इस पर मुआखजा होगा और पकड़ होगी। यानी एक पर ज्यादा खर्च कर रहा है, दूसरे पर कम खर्च कर रहा है, तो फिर इस पर मुआखजा होगा, इस पर मुआखजा होगा। अजीब, पकड़ होगी, इस पर पकड़ होगी। देखो, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजवाजे मुताहरात के साथ मुसावात करना, बराबरी करना। देखिए, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अजवाजे मुताहरात के साथ बराबरी का सुलूक इस तरह फरमाते थे कि दुनिया में कोई दूसरा शख्स उस दर्जे का बराबरी का सुलूक नहीं कर सकता। उसके बाद फरमाते, अल्लाहुम्मा हादा कसमी फीमा अमलिकु फला तलूमुनी फीमा ला अमलिकु, या अल्लाह मेरे इख्तियार में जितनी बराबरी बराबरी करना था वो तो मैंने कर ली, और जो बराबरी मेरे इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह उस पर मुआखजा न फरमाए, पकड़ न फरमाए। चुनाच आपको जितना कल्बी ताल्लुक अजवाज मुतहरात में हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से था, वैसा ताल्लुक और किसी से नहीं था, लेकिन वो तबई ताल्लुक था, लेकिन वो तबई ताल्लुक था। अलबत्ता अकली मोहब्बत और सुलूक के एतबार से आप सबके साथ बराबरी फरमाया करते थे। बहरहाल जहां कहीं मोहब्बत मामूर भी ही है, वो मोहब्बत अकली है, यानी जहां हुक्म दिया गया। मोहब्बत अकली जाबते का ताल्लुक है, अलबत्ता मोहब्बत अकली जाबते का ताल्लुक है और रुखा सुखा ताल्लुक है, और ये जहन्नम से बचने के लिए काफी तो है, लेकिन रुखा सुखा होने की वजह से किसी भी वक्त कम हो सकता है। लिहाजा इस मोहब्बत अकली को बढ़ाने के असबाब इख्तियार किए जाए। आज मोहब्बत अकली तो वाकईतन हर एक को है, लेकिन वो कम होती जा रही है, तो फरमाया इसको बढ़ाना चाहिए, इख्तियार उसके लिए असबाब इख्तियार किए जाए, जिसके नतीजे में रफ्ता रफ्ता मोहब्बत अकली मोहब्बत तबई में तब्दील होती चली जाएगी, और बिल आखिर तबई मोहब्बत के एतबार से भी अल्लाह उसके रसूल ही दूसरी चीजों के मुकाबले में ज्यादा महबूब हो जाएंगे। कहा इसलाह, जब इसलाह होगी तो फिर क्या होगा, वही जो मोहब्बत अकली थी वो मोहब्बत तबई बन जाएगी। हाँ, जो नॉर्मल इंसान है तो वो ऐसा ही होगा कि अकली कबूल कर ली जाएगी, लेकिन बाद में तो देखो, वो मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, जब वो अपने शेख के पास इस्लाह कराने के लिए गए, फिर जब वापस आए, शेख ने पूछा क्या फायदा हुआ, तो देखो अपना फायदा बताया ना, इसलिए हम भी पूछते हैं भाई क्या फायदा हुआ, तो फायदा ढूंढना, उन्होंने फायदे ढूंढे, तो फरमाया तीन फायदे हुए, तीन बात, उसमें से एक बताया था कि जो तबीयत जो जो शरीयत है वो मेरी तबीयत बन गई, मकरूहाते शरीया मकरूहाते तबीया बन गई, यानी शरीयत जिसको नापसंद करते थे अब वो मेरी तबीयत की नापसंद करते, पहले अकली नापसंद होता था और अब तबीयत भी नापसंद करती, ये है। तो ये चेंजिंग आ जाती है, कि जितनी अकली मोहब्बतें थी वो सब तबीई बन जाती है। अब अल्लाह से मोहब्बत है, फिर इंसान की अल्लाह से तबीई मोहब्बत बन जाती है और दूसरी मोहब्बतें फिर कम हो जाती है दूसरे नंबर पर। तो खैर ये बाद में जाकर ये बदलती है, इसलिए फरमाया मेहनत करनी चाहिए, असबाब इख्तियार करनी चाहिए ताकि ये मोहब्बत बढ़े। जब मोहब्बत बढ़ेगी तो फिर इंसान आगे बढ़ेगा, वरना ये तवकली मोहब्बत भी घटते घटते फिर इंसान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला बन जाता है। और ये मोहब्बत अकली मोहब्बत तबीयी में किस तरह तब्दील होती है, उसका तरीका यह है कि इंसान मोहब्बत अकली के मुक्तजा पर मुदावमत करे, हमेशा करे और पाबंदी करे, क्योंकि जब अकली तौर पर यकीदा है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मुकद्दम करके अपनी ख्वाहिशात दुनियावों को उसके मुकाबले में कुचलता रहे कुचलता रहे, तो रफ्ता रफ्ता ये मोहब्बत अकली मोहब्बत तबीई में तब्दील हो जाएगी। यानी वही ख्वाहिशात तबीया यानी गुना उसको कुचलता रहे, और कुछ ख्वाहिशात तो जायज होती है, कुछ ख्वाहिशात गुना होती है। तो फरमाया ख्वाहिशात को कुचलता रहेगा, जरूरत पर आता जाएगा, तो मोहब्बत अकली मोहब्बत तबी में तब्दील हो जाती है। देखो एक होता है मौलवी और एक होता है सूफी अल्लाह वाले, कि उसमें यही फर्क है कि मौलवी की मोहब्बत मोहब्बत अकली है और सूफी की मोहब्बत मोहब्बत तबी होती है। वही बात आगे जो पहले कही थी मैंने कि देखो मौलवी हम आवाम की भी मोहब्बत मोहब्बत अकली है, और सूफी यानी जो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अपनी इस्लाह करा दी है उसी को सूफी कहते हैं। अल्लाह वालों को ये तसव्वुफ की जबान में, सूफीजम की जबान में जिसको कहते हैं ना सूफीजम, तो सूफीजम जो है ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको बुरा बनाया गया है ताकि लोग उससे दूर हो जाए और सूफीजम में जा ही नहीं। हालांकि ये तो आईने दीन है, दीन है, इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। हाँ तो क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है अल्लाह वालों के साथ बैठो, अल्लाह वालों के साथ बैठो, सोहबते सालिहीन फरमाया, कूनू मा सादिकीन फरमाया। तो फरमाया तो वो है सूफी की मोहब्बत मोहब्बत तबीई होती है। और ये जो कहा जाता है कि मौलवी को चाहिए कि वो किसी सूफी के पास जाए, मौलवी को भी चाहिए कि किसी अल्लाह वाले से के पास जाए और उसकी सोहबत उठाए और उससे फैज हासिल करे। उसकी वजह यह है कि मौलवी का किताबें पढ़ने के नतीजे में अल्लाह ताला के साथ सिर्फ जाबते का रूखा फीका ताल्लुक कायम है। अल्लाह ताला से ताल्लुक तो कायम है लेकिन ये रूखा सूखा है, अकली है, ये जाबते का ताल्लुक है, कानून का ताल्लुक, जाबते यानी कानून का ताल्लुक। उसको जहन्नम से तो बचा लेगा बशर्ते कि वह अहकाम पर अमल करता रहे, लेकिन अगर इस मौलवी ने इस कानूनी और जाब्ते का ताल्लुक पर इक्तिफा किए रखा उसी पर बस, तो उस बात का खतरा है कि किसी वक्त दूसरे चीजों की जो मोहब्बत तभी उसके दिल में है वो गालिब आ जाए और मोहब्बत अकली मगलूब हो जाए। इसलिए उलमा को भी अपनी इसलाह करानी चाहिए और इन लोगों की अल्लाह वालों की सोहबत में जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो आहिस्ता आहिस्ता वही मोहब्बत उनके ऊपर गालिब आ जाएगी दुनिया की और अकली मोहब्बत कम हो जाएगी। तो अब मौलवियों को भी जरूरी है तो फिर क्या आवाम को जरूरी नहीं है, जबकि इनके पास इल्म है, इनके पास इल्म है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि उनको उनकी सोहबत में बैठना तो फिर आवाम को कितना जरूरी है। जी इसलिए याद रखे ये एक बहुत बड़ी कमी है, उसके बगैर दीन कामिल नहीं हो सकता, याद रखे उसके बगैर दीन कामिल नहीं हो सकता। कमाल के लिए शरीयत तरीकत और फिर हकीकत है, हकीकत तक पहुंचना है तो इब्तिदा शरीयत से करनी है, शरीयत की इब्तिदा तो हो गई, फिर तरीकत में आना है, फिर उसके बाद अल्लाह हकीकत तक ले जाएगा। मोहब्बत अकली को मोहब्बत तबीई में तब्दील करने की कोशिश करें। किताब में तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि मोहब्बत अकली काफी है, ये तो हमने जैसा आ गया तो उस पर खुश न हो जाओ, ये उसी का जवाब दे रहे तरीकत। तरीकत यानी उसी तसव्वुफ का नाम दूसरा तरीकत है, जो किताबों में कभी पढ़ोगे तरीकत और शरीयत, तरीकत और शरीयत। जाहिरी अहकाम का नाम शरीयत है और उसके अंदर जो उसकी रूह है उसका नाम तरीकत है, ये समझ लो। जैसे इंसान के जिस्म का नाम जिस्म है, उसके अंदर की जो एक चीज है जिससे इंसान हरकत करता है उसका नाम है रूह, तो ऐसे ही हर हर शरीयत के हर अमल के अंदर एक उसकी रूह है, उस रूह का नाम तरीकत है जी। उसको रूह कहो तरीकत कहो तो वो भी डालना जरूरी है, जाहिर बात जब जाके काम मुकम्मल होगा, जब जाके शरीयत मुकम्मल होगी। अब वो रूह थोड़ी बहुत तो होती है, जैसे बताया ना अकली मोहब्बत, अब ये मोहब्बत तो है, अब ये थोड़ी है, अब इसको बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएंगे तो ये भी चली जाएगी, इतनी तो हर एक के अंदर होती है अकली। तो अब उसको बढ़ाना है, तो उसको कहते हैं कि किताब में तो हम पढ़ लिया कि मोहब्बत अकली काफी है, उस पर हम खुश है कि हमें मोहब्बत अकली हासिल है। अब अगर हमें दुनिया की मोहब्बत ज्यादा लग रही है और बीवी बच्चों की और मालो दौलत की मोहब्बत ज्यादा मालूम हो रही है तो उसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि मोहब्बत तभी है। बात तो ठीक है, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब तक इस मोहब्बत तभी को काबू में नहीं करोगे तो उस बात का खतरा रहेगा कि मोहब्बत तभी किसी वक्त भी मोहब्बत अकली पर गालिब ना आ जाए और कोई गुनाह न करा ले, वरना मोहब्बत अकली तो हर मोमिन को हासिल है। क्योंकि जो शख्स इस बात पर ईमान ले आया कि मेरा खालिक अल्लाह ताला है, मेरे मालिक अल्लाह ताला है, वही कारसाज है, वही मोहब्बत के लायक है, जो आदमी इन बातों पर ईमान ले आया उसको मोहब्बत अकली तो हासिल हो गई, लेकिन उसके बाद जो गुना सरजद होता है, जो गुना उससे हो जाता है, वो इसलिए होता है कि मोहब्बत तभी इस मोहब्बत अकली पर गालिब आ जाती है जी। मोहब्बत तभी मोहब्बत अकली पर गालिब आ जाती और गुना करा देती, लिहाजा मोहब्बत और मश्क और मुजाहदा करना पड़ता, लिहाजा मोहब्बत मश्क और मुजाहदा करना पड़ता, फिर उस मुजाहदे के नतीजे में ये मोहब्बत अकली मोहब्बत तबीई में तब्दील हो जाती है। इसी मोहब्बत तबीई का नाम इश्क है। अब समझ में आ गया कहां जाकर इश्क बताया, अरे समझे कुछ। इसका नाम इश्क है, इसलिए कुरान में फरमाया अल्लाह ताला ने अल्लदीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, फरमाया जो मोमिनिन है वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करता है। इश्क शदीद मोहब्बत, जब मोहब्बत में शदीद हो जाती है वही आशिक हो जाता है। इसी मोहब्बत जो अकली थी वो जब तभी बन गई उसी का नाम इश्क है, और जब इश्क लग जाता है किसी को तो फिर उसको किसी की परवाह नहीं होती, फिर उसको किसी की परवाह नहीं होती, कौन ऐब निकालता है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या समझेगा, फिर उसको नहीं होता। ये इश्क में जब चले जाते हैं तो उसको फिर पड़ी नहीं होती, जब तक वो अकली में होते हैं तो वो ये सोचते हैं दाएं बाएं देखते हैं, अरे क्या होगा, क्या समझेंगे, क्या, तो वो जो क्या क्या जो हमारे अंदर है ना, ये अकली तक है, जब उसको तभी में जाएंगे वो इश्क हो जाएगा। अल्लाह क्या इश्क है। वही हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है। देखो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और वहां 40 दिन कयाम किया। इंशाल्लाह इसको बाद में पढ़ेंगे या पूरा कर लेते, चलो बात करीब में। वहां 40 दिन कयाम किया और आपकी सोहबत उठाई। जब 40 दिन के बाद हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह वापस जाने लगे तो हजरत हाजी साहब ने उनको रुख्सत करते हुए फरमाया, मियां रशीद अहमद हमने जो कुछ तुम्हें देना था वो दे दिया। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बाद में फरमाते थे, कि मैंने उस वक्त बहुत गौर किया कि क्या दे दिया, यानी बजाय तो खाली रहे 40 दिन, दिया क्या? अरे ये सारा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा दिया जाता है कि पता भी नहीं चलता। जैसे वो सॉफ्टवेयर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको वो फिट किया जाता है, ऐसे ही एक अल्लाह वाले के सीने में से दूसरे के सीने में वो अल्लाह वाले वो सॉफ्टवेयर फिट कर देते हैं, फिर वो काम करना शुरू कर देता है। जी, तो बोले हमने जो देना था वो दे दिया, पता भी नहीं चला, वो फिट कर दिया उनके अंदर, डाउनलोड कर दिया। 12 साल तक समझ में नहीं आया वो है किधर, समझ में नहीं आया कि क्या दिया। 12 साल के बाद पता चला कि अच्छा ये चीज दी है, 12 साल, ये वो चीज थी जिसको ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई, जोहद जाहिद रा व दीन दीनदार रा, जोहद जाहिद रा व दीन दीनदार रा, जर्रा दर्दे दिल अत्तार रा, जर्रा दर्दे दिल अत्तार रा, यानी अल्लाह आप जाहिद को जोहद दे दे और दीनदार को दीन दे दे, जिसको जो चाहे दे, लेकिन मुझे दर्दे दिल का एक जर्रा अता फरमा दे। क्या है देखो ये चीज है दर्दे दिल, अरे दर्दे दिल अजीब चीज है, अल्लाह वाकई दर्दे दिल जो है वो हम समझे नहीं, अल्फाज तो बोलते हैं दर्द दर्द, दर्दे दिल एक अजीब चीज है जो बहुत बाद में मिलती है। तो क्या देखो ये भी मांग रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे तो दर्दे दिल का एक जर्रा अता फरमा दे। वो दर्दे दिल का जर्रा जो ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने मांगा, और जिसके बारे में हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 12 साल के बाद पता चला कि ये चीज दी, वो दर्दे दिल का जर्रा, यही मोहब्बती तबीई है। हाँ, मोहब्बत तभी, जब ये दर्दे दिल मिलता है ना, फिर जितना गुनेगार इंसान होता है उससे मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि दर्द बढ़ता है। वो मोहब्बत नहीं है कि तुम गुनाहों से मोहब्बत करते हो, वो अंदर का एक दर्द उसको खाता है, वो उसको समझाता है कि बेचारा ये कैसे अल्लाह की तरफ आ जाए। अब लोग समझ रहे हैं कि ये तो गुनेगार से मोहब्बत कर रहे हैं, ये गुनेगार से मोहब्बत नहीं है, ये इसका नाम है दर्दे दिल। और जब ये दर्दे दिल नहीं होगा तो उम्मत में दावत का काम कैसे करेंगे? दर्दे दिल चाहिए, इसीलिए तो फरमाया दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोबिया, समझे? ये दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दर्दे दिल था, वही इस उम्मत को मिला। तो फरमाया 12 साल के बाद पता चला कि मुझे क्या दिया है। जब हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह वापस गंगो पहुंचे तो एक मुद्दत तक अजीब आलम इस्तिगराक में रहे, आलम इस्तिगराक में रहे। देखो कंप्यूटर जब छोटा होता है ना और उसमें कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो तो वो भी आलम इस्तिगराक में चला जाता है, पता है, जिसका नाम है हैंग। ये आपने सुना होगा, ये देखो आपको इस जबान से समझा तो जरा जल्दी समझ में आ जाएगा, जो वो भी आलम इस्तिगराक में चला जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है और डाल दिया लोड ज्यादा। तो ऐसे ही जब इन्होंने उनको दिया है तो फरमाए जाने के बाद एक अजीब आलम इस्तिगराक में रहे। और हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो फिर आती है वो ताकत, हाँ डाउनलोड हो रहा है। तो और हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को खत में भी लिख खत भी नहीं लिखा, ऐसे आलम इस्तिगराक कि खत भी नहीं लिखा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यहां तक कि खुद हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा कि मुद्दत से आ अजीज का कोई खैरियत मालूम नहीं हुई। देखो किस हाल में है। जवाब में हजरत गंगोई रहमतुल्लाह लिखा कि हजरत बार बार लिखने का इरादा किया लेकिन इसलिए नहीं लिख सका कि मैं अपनी हालत इजार, यानी मेरी अपनी हालत आपकी खिदमत में क्या पेश करूं, मैं क्या पेश करूं अपनी हालत। तो फरमाया अलबत्ता आपके फैज़े सोहबत से यह महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत तबीयत बन गई, शरीयत तबीयत बन गई है, और मदा और जम यकसा हो गए, यानी अब कोई तारीफ करे या कोई बुराई बयान करे, सब बराबर हो, सब बुरा बराबर हो गए। यानी कोई तारीफ करे या कोई बुराई करे, दोनों में कोई फर्क ही मालूम नहीं होता। और किसी मसले शरी में, तीसरा, तीन बातें उनको मिली, तो तीसरा यह है, किसी मसले शरी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्काल बाकी नहीं रहा। जो आज शरीयत की एक एक चीज पर कोई ऐसा ऐसा, ये सब क्या है, ये इश्क न होने की वजह से एतराजात हो रहे। याद रखो, इस्लाम पर जितने भी एतराजात कर रहे हैं ये आशिक नहीं है, या एक दूसरे ग्रुप वाले एक दूसरे पर जो एतराज कर रहे हैं वो आशिक नहीं है। आज लोग कहते हैं तबलीग बिदत है, इनके पास इश्क नहीं। और दीन का ये मतलब मदरसा किधर से लाए, ये इश्क नहीं है। जब इश्क आएगा तसव्वुफ को बिगाड़ रही है, इश्क नहीं है, जब आएगा तो कोई एतराज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई एतराज नहीं रहा। वो तबीयत जब इश्क में तब्दील हो जाती है तो फिर हर हदीस के अंदर हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये हदीस उस हदीस का जवाब है, तो वो कोई हदीसों में तआरुज नहीं होता है। अल्लाह अकबर। जब ये लिखा तो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के खत हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिला, तो इस खत को पढ़कर, देखो तो सही, शेख भी कहा, इस खत को पढ़कर अपने सर पर रख लिया। अल्लाह पर फरमाया कि ये मकाम तो अब तक हमें भी हासिल नहीं हुआ। देखो तो सही, क्या जब शेख ऐसे थे तो मुरीद भी तो ऐसे होते थे। क्या कह रहे, फरमाया ये इनका आजीजी का मकाम, ये मकाम तो अब तक हमें भी हासिल नहीं हुआ, जो उनको हासिल हो गया, कैसे शेख थे और कैसे मुरीद थे। अल्लाह, कैसे शेख थे और कैसे मुरीद थे। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने पहली बात जो इरशाद फरमाई वो ये थी कि शरीयत तबीयत बन गई, यानी दर्दे दिल के जर्रा ने शरीयत को तबीयत बना दिया है। जब तक मुदर्रिस थे, पढ़ा रहे थे, तालिबे इल्म थे, उस वक्त तक शरीयत से अकली मोहब्बत थी, और जब से शेख से अपनी इसलाह करा ली तो अब वो मोहब्बत अकली मोहब्बत तबी में तब्दील हो गई। मोहब्बत अकली मोहब्बत तबी में तब्दील हो गई। अब तबीयत ही वो काम करना चाहती है जो शरीयत का तकाजा है, और खिलाफ शरा की तरफ तबीयत जाती ही नहीं। कुरान करीम में साहबे किराम के लिए इसी नेमत का जिक्र फरमाया, वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान। यानी अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में मुजय्यन कर दिया, और कुफ्र और फिस्क को और नाफरमानी को तुम्हारे दिलों में मकरो नापसंद बना दिया। गोया कि मोहब्बत अकली को तुम्हारे लिए, उसी का ये आयत है ना, उसी को मोहब्बत अकली को तुम्हारे लिए मोहब्बत तबी बना दिया। अल्लाह ताला हम सबको ये दौलत अता फरमाए, आमीन। लिहाजा हजरात साहबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत मिली वो वाकईतन इतनी मोहब्बत तबीई थी कि उसके मुकाबले में दुनिया की हर चीज उनकी नजर में हेच दर हेच थी, नीची बन गई। इसी वजह से अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में उनकी तारीफ करते हुए फरमाया, उलाइक हुमुर राशिदून, उनको राशिद होने की सनद दे दी। ये सनद उनको उस मुजाहदे की वजह से मिली कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मिटा दिया था और अपनी तमन्नाओं को फना कर दिया था। इसके नतीजे में अल्लाह ताला की जो मोहब्बत आती है वो मोहब्बत ऐसी पायदार होती है, हमेशा की होती है, कि उसके आगे दुनिया की मोहब्बत हेच दर हेच हो जाती है। इकबाल बाज औकात बड़ी हिकमत की बातें कहते हैं। अल्लामा इकबाल एक शायर गुजरे हैं, एक शायर में, वो इश्क जिसकी आग बुझा दे अजल की फूंक, वो इश्क जिसकी आग बुझा दे अजल की फूंक, उसमें मजा नहीं तपिश इंतजार का। यानी इश्क मजाजी की आग को तो अजल की फूंक बुझा देती है, यानी मौत। इश्क मजाजी यानी इंसानों का जो इश्क है, चीजों का जो इश्क है, इसकी जो आग यानी इसकी जो मोहब्बत शदीद होती है, उसको तो मौत, अजल यानी मौत जो है वो उसको बुझा देती है। ऐसे नापायदार इश्क की तपिश में कोई मजा नहीं। तो फरमाया ऐसा इश्क कि जिस जो हमेशा न रहे तो उसमें क्या मजा है, इश्क तो वो हो जो हमेशा ही रहे। तो फरमाया इश्क नापायदार यानी जो हमेशा नहीं रहते, इश्क की तपिश में कोई मजा ही नहीं, इश्क तो एक ही जात से होना चाहिए जो जात लाफानी है, उसका इश्क भी पायदार है, हमेशा का है, वो कभी नहीं मिट सकता, कभी बुझ नहीं सकता। ये इश्क उसी वक्त हासिल होता है जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए फना करके और अपनी तमन्नाओं को अल्लाह के लिए कुचल कुचल कर इस दिल को अल्लाह के लिए खाली करता है, तो उसके बाद ये इश्क हकीकी हासिल होता है। अब तो आजा, अब तो खिलवत हो गई। हजरत मजजूब साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपये होते उस जमाने के, तो मैं तुम्हें शेर पर दे देता। वो अजीब शेर न जाने किस आलम में कहा है, वो ये है कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खिलवत हो गई, एक तुम ही से क्या मोहब्बत हो गई, पूरी सारी दुनिया ही से नफरत हो गई। खैर, उनके पूरे अशआर है, इसमें इशारा अल्लाह जल्ल शानों की तरफ है कि मेरे दिल में दुनिया की जितनी ख्वाहिशात आरजू तमन्ना थी वो सब मैंने खत्म कर डाली, अब कोई तमन्ना दिल में बाकी नहीं रही, अब इस दिल को मैंने खलवत कदा बनाया, तन्हाई में रहा, ये अल्लाह अब ये दिल आपकी तजल्ली गाह बनने का मुंतजिर है, यानी आपकी तजल्ली की जगह बन जाए। खुलासा ये निकला कि जिस शख्स के पास भी ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बल्कि अहबियत अकलिया तो हासिल है, लेकिन चूंकि मोहब्बत अकलिया अलल अला मारजिल खतर है, इसलिए उसको फिक्र करनी चाहिए, यानी खतरे पर है, इसलिए उसको फिक्र करनी चाहिए कि इसकी ये मोहब्बत अकली मोहब्बत तबीयत में तब्दील हो जाए, यानी यूं समझो इसलाह की फिक्र करनी चाहिए। यूं खुलासा क्या है कि हर इंसान को अपनी इसलाह की फिक्र करनी चाहिए। ये सारी बातों का मैं एक आसान अल्फाज में जो बता रहा हूं, मोहब्बत अकली और तबीयत छोड़ो, आसान अल्फाज ये है कि हर इंसान को अपनी इसलाह की फिक्र करनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इसलाह इसलाह क्या कह रहे हो, ये सब दलाइल आपके सामने आ गए। तो फरमाया इसके लिए मोहब्बत और मुजाहदा करना पड़ता है, लिहाजा जहां अल्लाह ताला के अहकाम का मुकाबला इन ख्वाहिशात से हो जाए, वहां इन ख्वाहिशात को कुचलो, कुचलने के नतीजे में ये ख्वाहिशात कुश्ता बन जाएगा, यानी कीमती बन जाएगी, और उनके कुश्ता बनने के नतीजे में अल्लाह ताला हकीकी मोहब्बत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हकीकी मोहब्बत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए हर एक फिक्र करे अपनी इस्लाह के लिए, इसके बारे में सुस्ती न करे, मौत से पहले पहले का वक्त है, बावजूद के आमाल कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत अकली मोहब्बत तबी में तब्दील करना है, उसमें आमाल का कोई दखल नहीं, आमाल तो अपनी जगह पर चलते रहेंगे, इसमें इश्क भरना है, और ये सोहबत से होगा, आमाल के बढ़ाने से नहीं होगा, इसके सोहबत से होगा। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कह दिया मुझे अपने नफ्स से ज्यादा मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है लेकिन अपने नफ्स से भी ज्यादा आपसे नहीं, तो फौरन इसलाह कर दी। ठीक है, थोड़ी देर मुराकबा करें।